بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، آج اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ ہود کی 110ویں سے لے کر 113ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں حسین سبز علی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور نسندیہ ہم نے موسیٰ کو تورات پردان کی، کنتو اس میں مت بھید ہو گیا और यदि काफिरों को समय देने के संबंध में आपके पालनहार की परंपरा पहले से निर्धारित न होती तो निश्चित रूप से इसी संसार में उनके बीच फैसला कर दिया जाता और निसंदेह वे लोग गहरे संदेह में पड़े हुए हैं और निश्चित रूप से आपका पालनहार उनके कर्मों का बदला उन्हें पूर्ण रूप से प्रदान करेगा और निसंदेह वे जो कुछ करते हैं वो उससे पूर्णतः अवगत है। तो हे पैगंबर, जैसा कि आपको आदेश दिया गया है, आप और आपके साथ ईश्वर की ओर आने वाले लोग प्रतिरोध करें और उद्दंडता न करें कि निसंदेह जो कुछ तुम लोग करते हो ईश्वर उसे देखने वाला है और अत्याचारियों पर भरोसा न करो कि नरक की आग तुम्हें अपनी चपेट में ले लेगी और ये जान लो कि ईश्वर के अतिरिक्त तुम्हारा कोई सहायक नहीं है और किसी की ओर से तुम्हारी सहायता नहीं की जाएगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज शनिवार है, मुहर्रम की 15, अगस्त की 13 और मुर्दात माह की 22 तारीख। कार्यक्रम में आप पहले समाचार सुनेंगे, फिर राजनीतिक चर्चा होगी, उसके बाद हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे ईरान भ्रमण। कार्यक्रम के अंत में एक अन्य कार्यक्रम आप सुनेंगे, उज्ज्वल भविष्य। तो दोस्तों, ये थी हमारी रूपरेखा। कुछ ही क्षणों में विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि मुख्य मांगों की गारंटी के बाद ही मसौदे को स्वीकार किया जा सकता है। सलमान रुश्दी पर हमले के बाद उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रख दिया गया है। अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट से अपना समुद्री बेड़ा गुजारने की घोषणा की है। अमरीकी सीनेटर जेम्स रिश मानते हैं कि उनका देश भरोसेमंद घटक नहीं रह गया है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान ने कहा है कि परमाणु समझौते को बहाल करने के संदर्भ में यूरोप की ओर से दिए गए मसौदे को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब तेहरान की मुख्य मांगों के बारे में गारंटी दी जाए। वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी गई है कि ईरान ने यूरोप के द्वारा पेश किए गए मसौदे का अध्ययन किया है जिसे स्वीकार किया जा सकता है, मगर इस शर्त पर कि ठोस गारंटी इस बारे में दी जाए। अधिकारी का कहना था कि ईरान IAEA के साथ संबंधों, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में किए गए दावों, प्रतिबंधों के हटाए जाने और परमाणु समझौता न तोड़ने के बारे में गारंटी चाहता है। गत सोमवार को यूरोपीय संघ ने वियना में ईरान और अमेरिका के वार्ताकारों के बीच 4 दिन तक चली अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद एक अंतिम मसौदा तैयार किया था। यूरोपीय संघ के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि मसौदे में अब कोई बदलाव करना संभव नहीं है, अब दोनों पक्षों को अंतिम फैसला करना होगा। अमेरिका कह चुका है कि यूरोप के प्रस्ताव के अनुसार वो समझौता करने के लिए तैयार है। वहीं पर वियना में रूस के राजदूत ने कहा है कि आने वाले सप्ताह के शुरू में ही समझौते की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वार्ता पूरी हो चुकी है, अब कोई अन्य लंबी वार्ता नहीं होने वाली। اسلام اور مسلمانوں کا اپمان کرنے والے لیکھک سلمان رشدی پر امریکہ کے نیویارک شہر میں حملہ کیا گیا، جس کے بعد رشدی کے لیور کو بھاری نقصان پہنچا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی آنکھ بھی جا سکتی ہے۔ بھارتیہ مول کے برطانی لیکھک سلمان رشدی کے ایجنٹ نے بتایا ہے کہ رشدی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ جیون رکشک پرانالی پر رکھے گئے ہیں، وہیں پولیس نے حملہور کی پہچان ظاہر کی ہے۔ ایجنٹ کا کہنا ہے کہ رشدی کی ایک آنکھ جا سکتی ہے، جبکہ لیور کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ اینڈریو ویلے نے بتایا ہے کہ رشدی کے ہاتھوں کی نسیں بھی کٹ گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہور امریکی ہے، جس کا نام ہادی متر ہے اور اس کی عمر 24 سال ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حملے کی بھاونا کیا تھی، اس کا پتہ لگانے کے لیے ابھی جانچ کی جا رہی ہے۔ سلمان رشدی پر ایک سیمینار میں حملہ کیا گیا۔ حملہور نے رشدی کی گردن اور پیٹ پر چاقوؤں سے وار کیا۔ رشدی بھارتی مول کا ایک برٹش لیکھک ہے، جس کی عمر 75 سال سے زیادہ ہے اور وہ کئی ورشوں سے نیو یارک میں رہ رہا تھا۔ سلمان رشدی نے شیطانی آیات نامک ایک کتاب لکھ کر اسلام اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپمانت کیا تھا۔ عراق میں جاری راجنیتک گتیروت کے بیچ پاپولر فورس حشد الشعبی میں شامل اصحاب اہل حق نامک سنگٹھن کے پرمکھ نے یہ کہا ہے کہ سنسد کی بیٹھک شروع ہونی چاہیے۔ عراق میں 10 اکتوبر 2021 کو سنسدیے چناؤ کرائے گئے تھے، مگر راجنیتک دلوں کے بیچ تال میل نہ بن پانے کی وجہ سے اب تک وہاں پر سرکار کا گٹھن نہیں ہو سکا ہے۔ اسی بیچ صدر دھڑے کے نیتا مقتدی صدر نے یہ مانگ شروع کر دی ہے کہ سنسد کو بھنگ کر دیا جانا چاہیے، جبکہ ان کے سمرتھکوں نے سنسد کے بھیتر گھس کر پردرشن کیے ہیں۔ اصحاب اہل حق کے پرمکھ شیخ قیس خزعلی نے دیش کی سنستھاؤں کے سمرتھن میں آیوجت پردرشن میں بھاگ لیتے ہوئے کہا، ہم دیش کی رکشا، دیش کا وکاس اور دائتوں کے نرواہ کے لیے سرکار کے گٹھن کی پرکریا میں ہر سمبھو سہیوگ دیں گے۔ دیش کو داعش کے آتنکواد سے مکتی دلانے والی لوک پریہ فورس حشد الشعبی میں شامل نیتا نے کہا کہ سنسد کی ذمہ داری بجٹ کی سمیکشا کرنا بھی ہے، اس کے لیے بجٹ سے سمبندھت قانون کو پاس کرنا چاہیے۔ ان حالات میں اگر یہی استھتی بنی رہی تو دیش کے سامنے بڑی سمسیائیں اتپن ہو جائیں گی۔ عراق کے ایک سرکشا وشیشجھ نے بتایا ہے کہ سیریا میں استھت الہول چھاونی پر موساد کا نینترن بڑھتا جا رہا ہے۔ الہول نامک چھاونی عراق سے ملنے والی سیریا کی سیما کے نکٹ استھت ہے۔ اس کو عراق اور سیریا میں آتنکوادی گٹ داعش کی سب سے بڑی چھاونی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ بکر الوان نے بتایا کہ داعش کے آتنکوادیوں کے رہنے کے استھل کے روپ میں الہول چھاونی کے چاروں اور اسرائیل کے گپتچر سیوا موساد کا پربھاؤ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دوارا بنائی جانے والی یہ چھاونی اب انتراشٹریہ گپتچر ایجنسیوں کے لیے ایک بھو راجنیتک اپکرن کے روپ میں پریورتت ہو چکی ہے۔ اس میں آتنکوادی گٹ داعش کے 1900 سے ادھک آتنکوادی رہتے ہیں۔ یہ وہ آتنکوادی ہیں جو نہ کیول شیتر میں بلکہ پوری دنیا میں ہڑکمپ مچا سکتے ہیں۔ اس عراقی وشیشجھ کا کہنا ہے کہ گہن سمیکشا کے بعد یہ بات اسپشٹ ہوئی ہے کہ موساد سے سمبندھت ایجنٹ الہول چھاونی میں سکریے ہیں۔ وہ یہاں کے آتنکوادیوں کا سنچالن بھی کرتے ہیں اور اپنے پربھاؤ کا پریوگ کرتے ہوئے وہ آتنکوادیوں کو آتم گھاتی کاروائیوں کے لیے کہیں بھی بھجوا سکتے ہیں۔ امریکہ نے تائیوان اسٹریٹ سے اپنا سمندری بیڑا گزارنے کا اعلان کیا ہے۔ جہاں ایک طرف تناؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ اور چین کے راشٹرپتیوں کے بیچ ملاقات آیوجت کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہیں پر دوسری اور امریکہ نے ایک بھڑکاؤ قدم اٹھاتے ہوئے تائیوان اسٹریٹ سے اپنا سمندری بیڑا گزارنے کی بات کہی ہے۔ امریکہ کے ایک ورشٹھ ادھیکاری نے کہا ہے کہ امریکہ نوسینا اور وایو سینا سے تائیوان اسٹریٹ کے قریب ایک آپریشن کروا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر امریکہ یہ قدم اٹھاتا ہے تو تناؤ اور بھی ادھک بڑھ جائے گا۔ ایشیا کے معاملوں میں امریکی راشٹرپتی کے صلاحکار کورٹ کیمپ بیل نے کہا ہے کہ تناؤ کے باوجود تائیوان اسٹریٹ سے امریکی نو سینا کا بیڑا بھی گزرے گا اور امریکی وایو سینا کے ویمان اس علاقے میں اڑانیں بھریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتراشٹری قانون ہمیں یہ کرنے کی انومتی دیتا ہے۔ امریکہ دراصل ایک پرکار کا وہاں پر سینی ابھیاس کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی سنسد کی پرتنیدھی سبھا کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد چین نے تائیوان کو گھیر کر بڑے پیمانے پر سینی ابھیاس کیا تھا۔ تائیوان کا کہنا تھا کہ یہ سینی ابھیاس کسی یدھ کے سمان تھا۔ یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر جیمز رش کہتے ہیں کہ ان کا دیش بھروسے مند ساتھی نہیں رہ گیا ہے۔ کابل پر طالبان کے نینترن کی ورشگانٹھ کے افسر پر ایک امریکی سینیٹر نے امریکہ کو اوشوسنی گھٹک بتایا ہے۔ جیمز رش کہتے ہیں کہ افغانستان میں 15 اگست کو ہونے والے پریورتنوں اور طالبان کے ستا سنبھالنے کے بعد اب یہ اسپشٹ ہو گیا ہے کہ امریکہ بھروسے مند گھٹک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن سرکار نے امریکہ کی اس بگڑتی ہوئی چھوی کو سدھارنے کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اس امریکی سینیٹر کے انوسار طالبان کبھی بھی آتنکواد ورودھی ابھیان کا بھاگ نہیں رہے ہیں اور نہ ہی رہ سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان آج بھی آتنکوادی گٹوں کی شرن استھلی بنا ہوا ہے۔ جیمز رش مانتے ہیں کہ کچھ بادھاؤں کے کارن امریکہ کے آتنکواد ورودھی ابھیان کو کئی پرکار کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ورتمان سمے میں افغانستان بہت ہی خطرناک موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ امریکی سینیٹر رش کے انوسار القاعدہ پھر سے افغانستان واپس پہنچ چکا ہے، وہاں پر آتنکوادی گھٹنائیں بڑھنے لگی ہیں، وہاں کے بارے میں چنتائیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ امریکہ دوارا بھیجی جانے والی مدد انتتا طالبان کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے۔ جیمز رش کہتے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بائیڈن سرکار کو افغانستان میں کی گئی اپنی غلطیوں سے پاٹھ لینا چاہیے۔ بولیویا کے پورو راشٹرپتی نے بتایا ہے کہ امریکہ نے لیٹن امریکہ کو استھر کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایک امریکی سینیٹر دوارا کولمبیا کے راشٹرپتی کوستاوو پیٹرو کو امریکہ ورودھی بتائے جانے پر مورالیس نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے لیٹن امریکی دیشوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ کولمبیا کے راشٹرپتی گستاوو پیٹرو کے شپتھ گرہن سماروہ سے پہلے امریکہ کی ریپبلیکن پارٹی کے سینیٹر ٹیڈ کروز نے کہا ہے کہ لیٹن امریکہ کے 10 دیش امریکہ ورودھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پر ایک مت ہیں کہ امریکہ کو استھر کیا جائے۔ اسی بیچ بولیویا کے پورو راشٹرپتی نے کہا ہے کہ ٹیڈ کروز بولیویا کے 2019 کے ودروہ کا سمرتھن کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتنے کھیت کی بات ہے کہ ہمارے دیش کو اشانتی اتپن کرنے والا دیش بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بولیویا کوئی امریکہ کا غلام دیش نہیں ہے۔ مورالیس کے انوسار ہم اپنی سمپربھوتا اور اکھنڈتا کی رکشا کے لیے آگے بھی سنگھرش کرتے رہیں گے۔ الیکھنی ہے کہ پہلے وام پنتھی راشٹرپتی کے روپ میں گستاوو پیٹرو نے کولمبیا کے راشٹرپتی کے روپ میں شپتھ گرہن کی ہے۔ انہوں نے دیش میں اہم بدلاؤ لانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ سعودی عرب کے یوراج اپنے ویرودھیوں کے دمن کے لیے ایک وشیش سرکشا اکائی کا گٹھن کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے جانکار سوتروں نے بتایا ہے کہ اس دیش کے یوراج محمد بن سلمان نے سوئم کو سرکشت کرنے اور اپنے ویرودھیوں کے دمن کے لیے ایک وشیش کڑے پربندھ کیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وشیش سرکشا اکائی کی ذمہ داری سعودی عرب کے بھیتر اور باہر بن سلمان کے ویرودھیوں کا دمن کرنا ہے۔ مرأت الجزیرہ نامک ویب سائٹ کے جانکار سوتروں کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے یوراج محمد بن سلمان نے سرکشا اکائی کے سدسیوں کے ویتن کو ادھک رکھنے پر زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کو جب بھی جن اپکرنوں کی ضرورت ہو ان کو تتکال انہیں اپلبدھ کروایا جائے۔ मोहम्मद बिन सलमान ने आदेश दिया है कि विरोधियों पर पूरी नजर रखी जाए और जैसे ही मौका मिले उन्हें दबोच लिया जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने यह आदेश भी जारी किया है कि सऊदी अरब के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि विदेश में रहने वाले उनके किसी भी विरोधी के साथ संपर्क करे तो उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे तालिबान के लिए मुसीबत बने जवाहरी की हत्या के बारे में,
अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार के प्रवक्ता,
और फिर बात करेंगे रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और खराब होते संबंधों के बारे में।
रूस के खिलाफ अमरीका की शत्रुतापूर्ण नीतियाँ जारी हैं।
और अंत में चलेंगे भारत, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लगाया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और भूतपूर्व मुख्यमंत्री,
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आतंकवादी गुट अलकायदा के प्रमुख ऐमन अल जवाहरी की हत्या को लेकर तालिबान के बीच मचे घमासान के बारे में। जवाहरी के कत्ल से तालिबान को फायदा होगा या नुकसान, इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा कि इंटेलिजेंस गैप की वजह से तालिबान के किसी भी नेता को काबुल में ऐमन अल जवाहरी के मौजूद होने की सूचना नहीं थी। उन्होंने कहा कि जवाहरी की हत्या के बाद अब तालिबान सरकार को औपचारिकता देने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए ताकि तालिबान सरकार दुनिया के सामने जवाबदेह बन सके। अलकायदा के मुखिया की हत्या के बारे में तालिबान नेताओं के विरोधाभासी बयानों से लगता है कि इस गुट के भीतर इस मसले पर मतभेद पैदा हो गए हैं। अपुष्ट खबरें बताती हैं कि जवाहरी काबुल में एक तालिबान अधिकारी का मेहमान था। जवाहरी को दफन किए जाने का विषय भी तालिबान के भीतर मतभेद का कारण बन गया। जवाहरी की हत्या को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी एक नाकामी समझा जा रहा है, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि इस घटना से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की बदनामी हुई है। टीकाकार कहते हैं कि तालिबान तो पहले से चाहते थे कि जवाहरी अफगानिस्तान में शरण लें, और इसके लिए तालिबान ने निश्चित रूप से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की स्वीकृति भी ली होगी। अमेरिका पहले से कहता रहा है कि तालिबान ने दोहा समझौते का उल्लंघन किया, क्योंकि काबुल पर कब्जा करने के विषय में उसने उन शर्तों को पूरा नहीं किया जिनकी उसने पहले हामी भरी थी। अमेरिका की नज़र में जवाहरी को शरण देना भी तालिबान की ओर से दोहा समझौते का उल्लंघन है। जवाहरी की हत्या के बाद तालिबान काफ़ी जटिल परिस्थितियों में फंस गए हैं, और उनकी कोशिश है कि उनकी सरकार को विश्व स्तर पर मान्यता मिल जाए। अफगानिस्तान के मामलों के विशेषज्ञ सैयद हुसैन हुसैनी का कहना है कि तालिबान इस समय कई समूहों में बंटे हुए दिखाई देते हैं। आम नागरिकों से बर्ताव का मुद्दा हो या आतंकियों से सहयोग का विषय हो, तालिबान के अलग अलग समूह अलग अलग राग अलापते दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति के चलते अफगान जनता में असमंजस की स्थिति है। जहां तालिबान के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि वो देश में अलग अलग जातियों और समूहों को एकजुट करें और व्यापक जनाधार की सरकार बनाए, वहीं अब इस गुट के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि खुद को अलग अलग समूहों में बंटने से नहीं बचा पा रहा है। तालिबान की कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता मिल जाए, मगर वर्तमान हालात में तो ये मंजिल काफी दूर दिखाई देती है। दोहा समझौते की विषय वस्तु अभी सामने नहीं आई है, मगर तालिबान खुद को इस समझौते के पीछे नहीं छिपा सकते।
और अब चर्चा करते हैं अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते टकराव के बारे में। क्या दोनों देशों के बीच होती तकरार बड़े युद्ध में बदल सकती है? इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी अख्तर अब्बास।
रूस के खिलाफ अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियां जारी हैं, जबकि वॉशिंगटन की इस धमकी के बाद कि वो रूस को आतंकवादियों का समर्थक करार दे देगा, मॉस्को ने व्हाइट हाउस को सचेत किया है कि इस प्रकार का फैसला द्विपक्षीय संबंधों को बंद गली में पहुंचा देगा, जहां से लौटना असंभव होगा और इससे संबंध भी पूरी तरह टूट सकते हैं। रूस के विदेश मंत्रालय में उत्तरी अमेरिका डेस्क के प्रभारी अलेक्जेंडर दारचीव सचेत करते हैं कि अगर अमरीकी सेनेट ने रूस को आतंकवादियों का समर्थक देश के रूप में कोई प्रस्ताव पारित किया तो इससे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। संबंधों का स्तर कम तो होगा ही, संभव है कि संबंध टूट भी जाएं। अमेरिका वर्षों से आतंकवाद का हथकंडा दूसरे देशों पर दबाव के लिए प्रयोग करता आ रहा है और वो इस हथकंडे को अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करता रहा है। यही कारण है कि वॉशिंगटन भी इसी कोशिश में है कि वो यूक्रेन की जंग में रूस पर अपना दबाव बढ़ा दे और आतंकवाद का नया शोषा लेकर रूस के विरुद्ध नया मोर्चा खोल दे, ताकि मॉस्को पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जा सकें। इसी परिधि में अमरीकी विदेश मंत्रालय के कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने अपील की है कि रूस ने चेचनिया, जॉर्जिया, सीरिया और यूक्रेन में जो काम किया है उसकी वजह से उसे आतंकवाद का समर्थक देश करार दिया जाए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के समय से ही रूस और पश्चिमी देशों के बीच मतभेद की खाई गहराती चली गई और इसी के साथ ही मॉस्को और वॉशिंगटन के संबंध भी बिगड़ गए। क्रेमलिन ने यूक्रेन में हथियार पहुंचाने की वजह से बारंबार पश्चिम की आलोचना की है और सचेत किया है कि वॉशिंगटन की इस प्रकार की कोशिशें हालात को और भी बदतर बना देंगी।
और अब रुख करते हैं भारत का और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद फारूक अब्दुल्ला की, कि जिन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की योजना पर काम कर रही है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और भूतपूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। उन्होंने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब से भाजपा का प्रशासन आया है जो भी वो कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में था। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ये सब कुछ राष्ट्रीय स्वयंसंघ के कहने पर हो रहा है और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम लोगों को बराबरी का हक दिया था उसे छीनने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये किसी भी हाल में देश के मफाद में नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में ताकत के बल पर तमाम लोगों को चुप कराने का जो प्रयास हो रहा है उसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बार बार नई दिल्ली को ये समझाने का प्रयास किया कि कश्मीर एक डेलिकेट इशू है, इसको संजीदगी से लिया जाए, परंतु वो ताकत के नशे में चूर होकर कश्मीर में अपनी मर्जी की नीतियां अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हित और नेशनल हित अलग अलग चीजें हैं और मेरा ये मानना है कि जो इस समय नई दिल्ली की हुकूमत कर रही है वो राष्ट्रीय हित में नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा
दूसरा नक्सल की तरह क्यों नहीं, आज वतन को खतरा है। एक तरफ से वो जमात है जिसे बीजेपी कहते हैं और वो आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ की कड़ी है,
میں کہ سب لوگ برابر ہیں, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, جو بھی اس وطن میں رہنے والا ہے وہ برابر کا حق رکھتا ہے. مگر ہم تو سو حق قانون چاہو یا اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یا پورے آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, یہ خطرہ ہے. بات کریے گا, آج میں کہوں گا یہ سڑک بنے گی وہ نہیں, اگر ملک ہی نہیں رہا تو سڑک کیا بنے گی, ہم زندہ کیسے رہیں گے. آج دیکھیے, آج جو پی ٹی پی کا مینیفیسٹو جو ان کا منشور ہے جو نکلا ہے, اس میں ایک چیز ہم نے داخل کی ہے پہلی دفعہ کہ ہم 370 دفعہ جو ہے اس کو ختم کریں گے. یعنی ہماری جو خاص جگہ ہے, جو ہمارا آئین میں حق ہے, اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. ان کی چان جو سان پوزیشن چھو, اس سان آئین چھو, سان جنگ چھو, یہ ساری دفن کر بیٹھ کر جاؤ. ریاست
اس بیچ جموں کشمیر میں سوترنت دیوس کے حوالے سے سرکشا کے کڑے پربند کیے گئے ہیں. سری نگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم کو سرکشا بلوں نے چاروں طرف سے اپنے نیانترن میں لیا ہے اور یہاں پر کیمرہ وغیرہ بھی لگا دیے گئے ہیں. ہر آنے والے کو باریک بینی سے چیک کیا جا رہا ہے. سری نگر کے مارگوں پہ بھی سرکشا کے کڑے پربند کیے گئے ہیں. سرکشا ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ انہیں یہ گپچر ایجنسیوں سے سوچنا پراپت ہوئی ہے کہ الگاوادی سوترنت دیوس میں کوئی بادھا ڈالنے کا پریاس کر رہے ہیں, پرنتو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے کسی بھی پریاس کو سفل ہونے نہیں دیا جائے گا. سپتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
دوستوں, راجنیتک چرچا کا یہ دینک کارکرم اب یہیں سماپت ہوتا ہے.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. دوستو, آپ نے ابھی راجنیتک چرچا سنی. اب پیش ہے کارکرم ایران بھرمڑ.
ایران بھرمڑ.
دوستو, کارکرم ایران بھرمڑ کے کنیا کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے. آج ہم کرج نگر اور اس کے پراکرتک سوندریہ کے بارے میں چرچا کریں گے.
دوستو, کارکرم شرنکھلا ایران کے بھرمڑ کی اس کڑی میں ہم کرج نگر کی کچھ پراکرتک سندرتا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. ایران کے مہتوپورن پراکرتک کیندروں میں سے ایک البرز پروت کی اونچائی والے چھیتر ہیں, وشیش کر وہ چھیتر جو چالوس اور ہراز راج مارگ کے کنارے استھت ہیں. یہاں پر چاروں اور پراکرتک سوندر دکھائی دیتا ہے. اس چھیتر میں بہنے والی ندیاں ہمیشہ اپنی خوبصورتی بکھیرتی رہتی ہیں. ایران کا یہ چھیتر پورے سال پریٹکوں کی اپواستی کا استھل رہتا ہے. یہاں پر سال کے کچھ مہینوں میں اسکی کا آنند اٹھانے والے جمع ہوتے ہیں. دسمبر سے مارچ کے دوران اس استھان پر اسکی کے پریمی एकत्रित होते हैं। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला अमीर कबीर बांध भी पूरे साल पर्यटकों की मेजबानी का केंद्र बना रहता है। करज चालूस राजमार्ग पर एक टनल बना हुआ है। ये लंबा टनल अपने आप में बहुत आकर्षक है।
करज नगर के निकट बसे हुए गांव बहुत ही सुंदर हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि वे पहाड़ के आंचल में पाए जाते हैं, जहां पर हर ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। इन्हीं गांवों में से एक का नाम रुस्ताए आतिशगाह है। फारसी भाषा में गांव को रुस्ता कहा जाता है। इस गांव को करज प्रांत के पर्यटक स्थलों में से एक आकर्षक स्थल माना जाता है। आतिशगाह नामक ये गांव करज नगर से 20 किलोमीटर दूर पश्चिमोत्तर में बसा हुआ है। इस गांव की सड़क आगे जाकर चालूस राजमार्ग से मिलती है। चालूस राजमार्ग वो रास्ता है जो पूरे साल खास रौनक लिए होता है।
आतिशगाह गांव का इतिहास सासानी और अश्कानी काल से मिलता है। उस काल में ये गांव प्राचीन पारसियों का शरण स्थल रहा है। पर्वतारोहण के लिए ये गांव बहुत ही उचित स्थल है। इसके अतिरिक्त वॉकिंग के लिए भी ये एक उपयुक्त स्थल है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि करज नगर में कई खूबसूरत गांव स्थित हैं। उन्हीं गांव में से एक का नाम कुदूर है। यहां पर हरे भरे बाग, प्राकृतिक झरने और पानी के सोते देखे जा सकते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी है। बाहर के मौसम में दूर दूर से लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं।
संक्षिप्त टूर के लिए ये गांव बहुत अच्छा एवं सुंदर स्थल है। यहाँ का इतिहास सफवी काल से मिलता है। करज नगर से इसकी दूरी 18 किलोमीटर की है। इस गांव को विगत में कोहनेदर या कोहेंदूर के नाम से भी जाना जाता था। कोंदूर गांव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान के सफर को एक यादगारी सफर बना देती है, जैसे फूलों की खूबसूरत वादियां, झरने, घने पेड़, इमामजादे अब्दुल्ला का मकबरा, पहाड़ की ऊंची चोटियां और इसी प्रकार की बहुत सी दूसरी चीजें। करज से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य गांव स्थित है जिसका नाम है गच्छसर। ये गांव प्राकृतिक सौंदर्य से मालामाल है।
गच्छसर समुद्र की सतह से 2230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है। जाड़ों में यहाँ खूब बर्फ गिरती है। इसका संबंध सफवी काल से बताया जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं। यहाँ के निवासी सामान्यतः कृषि और पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ पर आज भी पारंपरिक ढंग से पशुपालन किया जाता है। गेहूं और जौ के अतिरिक्त गच्छसर में सेब, अखरोट, चेरी और कई अन्य प्रकार के फल पैदा होते हैं। यहाँ का पनीर भी बहुत मशहूर है। ये गांव एक पहाड़ के आंचल में स्थित होने के कारण विशेष प्रकार की सुंदरता का मालिक है। यहाँ पर फलों के बागों के अतिरिक्त इसकी के लिए भी उपयुक्त तो स्थल मौजूद है। यहाँ पर बहने वाली गच्छसर नदी की अपनी अलग खूबसूरती है।
करज के गच्छसर के प्राकृतिक सुंदर स्थलों में वेला नामक सोता, खूबसूरत फूलों की घाटियां, दीजिन नाम की स्की स्थल, बर्फ की गुफा और गच्छसर नामक नदी का नाम लिया जा सकता है। गच्छसर से कंदवा नामक टनल या सुरंग, पत्थरों से बना हुआ प्राचीन पुल भी यहां मौजूद है, जिसका संबंध इलखानी काल से है। पत्थर से बने इस पुल की निर्माण शैली को देखकर इसके बनाने वाले की दक्षता का पता चलता है। कहते हैं कि इसके निर्माण में केवल पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल किया गया है।
गच्छसर में विलायत नाम का एक पुराना इमामबाड़ा भी है। वसंत के मौसम में इस क्षेत्र की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है और ईरान के कोने कोने से लोग इसको देखने के लिए यहाँ आते हैं। गच्छर का फूलों का बाग वसंत के मौसम में हर आने वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर पाए जाने वाले ट्यूलिप के फूल केवल वसंत ऋतु में ही होते हैं। ये ईरान का राष्ट्रीय फूल है। ईरान में ट्यूलिप फूलों की लगभग 19 नस्लें या प्रजातियां पाई जाती हैं।
चालुस राजमार्ग पर एक अन्य क्षेत्र स्थित है जिसका नाम निसा गचसर है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में एक मशहूर गुफा है जो याखे मुराद के नाम से जानी जाती है। इस गुफा को देखने के लिए पर्वतारोहण से संबंधित उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। गाड़ी से गुफा के दरवाजे तक जाया जा सकता है। इस गुफा का तापमान सदैव ही 0 डिग्री से कम होता है, इसलिए वहां पर गर्म कपड़े पहनकर जाना बहुत जरूरी होता है। याखे मुराद वास्तव में प्रकृति का आश्चर्यचकित करने वाला एक उदाहरण है।
इस गुफा के भीतर की कुछ दीवारों पर सदैव ही बर्फ जमी रहती है, चाहे कितनी ही गर्मी पड़ रही हो। इसकी छत पर कहीं कहीं जमी हुई बर्फ की कंदीलें दिखाई देती हैं। वसंत के मौसम में इस गुफा के बाहरी क्षेत्र में नाना प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं। इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। चालुस राजमार्ग से ही एक रास्ता दिजीन स्की रिसोर्ट की ओर जाता है। दिजीन स्की रिसोर्ट की गणना विश्व के अति सुंदर स्की स्पॉट में होती है। यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ मनोरंजन के लिए दूर दूर से आते हैं।
करज प्रांत के नगरों में से एक का नाम तालेगान है। तालेगान नगर की स्पष्ट प्राकृतिक विशेषता यहाँ पर पाई जाने वाली ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तालेगान नगर अलबोर्ज प्रांत का प्रमुख नगर है। ये नगर 3 भागों से मिलकर बना है जिनके अलग अलग नाम हैं। तालेगान नगर में प्राकृतिक आकर्षणों के अतिरिक्त ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी पाए जाते हैं। इन स्थलों ने इस नगर के महत्व को अधिक बढ़ा दिया है।
तालेगान नगर अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के बीच के ठंडे क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की जलवायु ठंडी है, यही कारण है कि यहाँ पर शीतकाल के दौरान जितने लोग रहते हैं उससे कई गुना अधिक ग्रीष्मकाल में रहते हैं। तालेगान के निकट स्थित पर्वत अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला का भाग है जो लगभग 90 किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्थित है। तालेगान के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी शाह अलबुर्ज है जो समुद्र की सतह से 4200 मीटर ऊंची है। इसके उत्तरी छोर पर 8 छोटे-छोटे ग्लेशियर हैं जो बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक हैं।
यहाँ पर पाए जाने वाले झरनों और क्षेत्र की वनस्पतियों ने इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ पर हरी भरी चरागाहें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी चोटियाँ हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है जिसके कारण चारों ओर झरने और पहाड़ी नदियाँ दिखाई देती हैं। जल की प्रचुरता ने इस क्षेत्र को जहाँ हरियाली प्रदान की है वहीं से प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर बना दिया है।
तालेगान नगर अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जिसमें गुफाएं, खनिज जल, आकर्षक ग्लेशियर, झीलें, हरे भरे खेत, फलदार बाग और कई प्रकार के अन्य जीवों के निवास स्थल पाए जाते हैं। ये नगर राजधानी तेहरान से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तालेगान नगर की ख्याति का एक अन्य कारण यह है कि वो इतिहास के महान क्रांतिकारियों और महापुरुषों का शरण स्थल भी रहा है। इस नगर में मौजूद दुर्ग प्राचीन काल से इसकी वैभवता एवं महानता की गाथा सुनाते हैं।
तालेगान के पहाड़ी क्षेत्रों में आलेबुये, मर्दावीज, जियारी, हसन सबा और अलवियाने, तबरिस्तान जैसी ऐतिहासिक हस्तियों की निशानियां पाई जाती हैं। इन लोगों ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के उद्देश्य से तालेगान में कुछ किलों का निर्माण कराया है। इन्हीं किलों में से एक किला मीमून दीज है जो तालेगान के पहाड़ पर स्थित है। इसका संबंध इस्माइलियान शासनकाल की महत्वपूर्ण धरोहरों में से है। इसके बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण 6 हिजरी कमरी के आरंभ में हसन सब्बा के शासनकाल में कराया गया था। इस किले या दुर्ग की गणना अपने काल की महत्वपूर्ण इमारतों में होती है। तालिगान तथा अलमूद पर हलाकू के आक्रमण के दौरान ये किला नष्ट हो गया था। वर्तमान समय में केवल उसकी दीवारें ही बाकी बची हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और अब पेश है इस सभा का अंतिम कार्यक्रम, उज्ज्वल भविष्य।
उज्ज्वल भविष्य।
दोस्तों, कार्यक्रम उज्ज्वल भविष्य की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए। आज हम इस्लामिक क्रांति की सफलता में ईरानी महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे।
पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि इस्लामी क्रांति की एक अन्य उपलब्धि महिलाओं का उत्थान है। 1978 में देश में शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शनों के साथ ही क्रांति की चिंगारी भड़क उठी और ईरानी महिलाओं ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला, पश्चिमी संस्कृति को रौंद डाला और मैदान में कूद पड़ी। ईरान की इस्लामी क्रांति के इतिहास में महिलाओं ने हमेशा ही महत्वपूर्ण और महान भूमिका निभाई है। क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने इस संदर्भ में कहा था, इस आंदोलन में महिलाओं का हक पुरुषों से ज्यादा है। महिलाओं ने क्रांति के आंदोलन में दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। पहली, राजनीतिक मंच पर प्रत्यक्ष भूमिका, दूसरी राजनीतिक मंच पर अप्रत्यक्ष भूमिका।
इस्लामिक क्रांति को सफल बनाने में महिलाएं कोई भी बलिदान देने से पीछे नहीं रहीं। उन्होंने प्रदर्शनों में भाग लिया, शहादतें दी और अत्याचार सहन किए। 9 सितंबर 1978 की त्रासदी के दिन, जिसे क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक शहीद हुईं। उस घटना के दौरान महिलाएं शहीदों के बीच बैठी थीं, जिन्हें शाही सैनिकों ने गोलियों से भून डाला। क्रांति में महिलाओं की अप्रत्यक्ष भागीदारी का मतलब है कि उनके पतियों, बच्चों, पिताओं और भाइयों पर जो प्रभाव पड़ा, वो उन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव से कम नहीं था।
ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने यह भाप लिया था कि महिलाओं की भागीदारी के बिना उनका यह आंदोलन सफल नहीं हो सकेगा। इसीलिए उन्होंने महिलाओं से संबंधित इस्लामी नियमों को स्पष्ट रूप से बयान करने का प्रयास किया, ताकि महिलाओं के दिल में किसी तरह की कोई आशंका बाकी न रहे। क्रांति की सफलता के बाद समाज में महिलाओं की सक्रियता के साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास ने इतनी ज्यादा उम्मीद पैदा कर दी थी कि इमाम खुमैनी मनोकामना करते थे कि अन्य इस्लामी देशों की महिलाएं भी ईरान की क्रांतिकारी महिलाओं में होने वाले परिवर्तनों से पाठ लेते हुए अपने समाज में सुधार करें और अपने देशों को आजादी और स्वाधीनता के मार्ग पर अग्रसर करें।
ईरान की इस्लामी क्रांति से पहले नारीवादी नारों के जरिए कोशिश की गई कि महिलाओं को वासना का खिलौना बनाकर उनके लिए एक झूठी पहचान गढ़ी जाए। पिट्ठूशाही शासन ने एक कठपुतली के तौर पर इस एजेंडे को आगे बढ़ाया। हालांकि इस्लामिक क्रांति ने महिलाओं के लिए एक विशेष स्थान और भूमिका को नजर में रखा हुआ था। इस्लामी गणतंत्र में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस्लामिक क्रांति ने महिलाओं को मॉडर्न जहालत से निकाला और उन्हें उनके अधिकार प्रदान किए, क्योंकि पुरुषों की तरह महिलाओं की रचना में किसी तरह की कोई कमी नहीं है।
ईरानी महिलाओं ने न केवल इस्लामी क्रांति के आंदोलन में बल्कि क्रांति की सफलता के बाद उसकी जड़ों को मजबूत बनाने और उसकी रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईरान इराक 8 वर्षीय युद्ध के दौरान ईरानी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई और ये साबित कर दिया कि पश्चिमी मॉडल अपनाने में महिला का व्यक्तित्व सुरक्षित नहीं है, बल्कि शालीनता, बलिदान और धार्मिक महत्वाकांक्षाएं ही उसकी गरिमा और सम्मान को बढ़ाते हैं।
ईरान इराक युद्ध या पवित्र प्रतिरक्षा के दौरान ईरानी महिलाओं ने मोर्चे पर लड़ने वाले वीरों का साहस बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इमाम खुमैनी ने इस संदर्भ में कहा था, महिलाओं ने अपनी भावनाओं से मोर्चे पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 8 वर्षीय युद्ध के दौरान ईरानी महिलाओं ने कई अद्वितीय उदाहरण स्थापित किए। मोर्चे पर वीरों की जरूरत की चीजों की आपूर्ति में भी महिलाओं ने सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। ईरान और इराक की 1200 किलोमीटर लंबी सीमा पर महिलाओं ने अपने माल और जान की बाजी लगा दी और कभी नहीं भुलाए जाने वाले दृश्यों को आकार दिया।
थोपे गए युद्ध के दौरान महिलाओं ने मस्जिदों, घरों, स्कूलों और हर उस स्थान पर कि जहां सहायता एकत्रित करना संभव था, सहायता केंद्रों की स्थापना की। ये प्रयास इतने अधिक महत्वपूर्ण थे कि इस्लामी क्रांति के संस्थापक ने इसकी प्रशंसा करते हुए और महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा था, टीवी पर जब मैं इन महिलाओं को देखता हूं कि वे सशस्त्र बलों की सेवा कर रही हैं, तो मेरे दिल में उनके लिए सम्मान बढ़ जाता है जो किसी और के लिए नहीं है। वे जो भी काम कर रही हैं किसी पद या दूसरी चीज के लालच में नहीं कर रही हैं, बल्कि वे ऐसा गुमनाम सैनिक हैं जो मोर्चे पर जिहाद में व्यस्त हैं। ये एक ईश्वरीय उपहार है, हमें इस नेमत के महत्व को समझना चाहिए और इन महिलाओं और मोर्चे पर लड़ने वाले उनके बेटों का अनुसरण करना चाहिए। हमें उनसे नैतिकता, ईमान और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए। हमें इस वर्ग का अनुसरण करना चाहिए जो बिना किसी लालच के राष्ट्र की सेवा कर रहा है, और हमें खुद में सुधार करना चाहिए।
8 वर्षीय युद्ध के दौरान महिलाओं की अन्य महत्वपूर्ण सेवा युद्ध में घायल होने वालों की सेवा है। पश्चिमी सीमा से लेकर दक्षिणी सीमा तक मोर्चे पर घायलों का इलाज और उनकी सेवा महिलाओं के लिए कठिन कार्य था, लेकिन इस्लाम और क्रांति से प्रेम ने उन्हें इसके लिए साहस दिया और उन्होंने घायलों के घावों पर मरहम रखने का काम किया। उनमें से कुछ ऐसी थीं जिन्होंने औपचारिक रूप से नर्सिंग की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द व्यवहारिक रूप से इसे सीख लिया। महिलाएं अपने भाइयों, बेटों और पतियों को मोर्चे पर भेजने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। इन प्रोत्साहन ने बड़ी संख्या में मर्दों को लड़ाई के मोर्चे पर भेजने में प्रभावी भूमिका निभाई। जब भी वे अपने किसी एक परिजन की शहादत की खबर सुनती थीं, तो बहुत ही धैर्य और साहस का परिचय देती थीं।
इमाम खुमैनी महिलाओं के मजबूत साहस के बारे में कहते हैं, ऐसी माएं कि जिनके जवान बेटे लड़ाई के मोर्चे पर शहीद हो गए हैं, वे गर्व करती हैं कि उनके लाडले इस्लाम के रास्ते में कुर्बान हो गए हैं और अपने दूसरे बेटों और परिजनों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। शहीदों के परिजनों की इमाम खुमैनी से मुलाकात के दौरान एक महिला ने उनसे कहा था, मेरे 3 बेटे थे और तीनों शहीद हो गए, अब मेरा और कोई बेटा नहीं है जिसे मैं इस्लाम पर कुर्बान कर सकूं।
इस्लामी क्रांति के बाद ईरान पर सद्दाम के हमले से महिलाओं के लिए एक दूसरा मोर्चा खुल गया। कभी वे खुद लड़ाई में भाग लेती थी और कभी मोर्चे पर उपस्थित होकर वीरों की मदद करती थी। जैसे जैसे लड़ाई लंबी खींचती चली गई, महिलाओं ने रक्षा संबंधित दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी। इस प्रकार उन्होंने मोर्चे के पीछे रहकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोर्चे पर पहुंचकर उन्होंने पुरुषों का साहस बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने शायरी, संगीत, फिल्म, थिएटर और फोटोग्राफी के जरिए लड़ाई के मोर्चे को मजबूत किया और लोगों का साहस बढ़ाया।
बहुत बुरी परिस्थितियों में भी जिस चीज ने महिलाओं को रक्षा क्षेत्र में सक्रिय होने और असमान युद्ध में डटे रहने का साहस प्रदान किया वो खुदा पर ईमान और इमाम खुमैनी के नेतृत्व पर भरोसा था। इसमें कोई शक नहीं है कि युद्ध में जो जीत हासिल हुई उसमें युद्ध के मैदान में और लड़ाई के मोर्चे पर महिलाओं की उपस्थिति ने अहम भूमिका निभाई है। बल्कि इसके बारे में अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस्लामी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस राष्ट्र के अग्रिम मोर्चे पर महिलाएं होंगी तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक थोपे गए युद्ध के दौरान 6,428 महिलाएं शहीद हुईं। युद्ध के दौरान मोर्चे पर 2,276 महिला चिकित्सकों और 22,808 नर्सों ने सेवा की। क्रांति की सफलता के बाद से आज तक विभिन्न अवसरों पर ईरानी महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। पैगंबर इस्लाम की बेटी हजरत फातिमा जहरा और नवासी हजरत जैनब को आदर्श मानते हुए ईरानी महिलाओं ने प्रतिरक्षा के दौरान अपनी वीरता का लोहा मनवाया और धैर्य के नए कीर्तिमान स्थापित किए। इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अब हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारे कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं partstoday.com/hi। तो इसी के साथ हमारी ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी दोस्तों से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Thank you.